नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत आज सारण जिले को 538 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात देंगे। मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने निचली अदालतों को जमानत याचिकाएं निपटाने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम में संशोधन कर उपयोगकर्ता शुल्क भुगतान को सशक्त बनाया। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न भागों में ठंड में बढ़ोतरी। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी का पूर्वानुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत आज सारण जिले को 538 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान श्री कुमार जनसंवाद भी करेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आज समृद्धि यात्रा के तहत सारण जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो जिले में विकास की रफ्तार को और तेज करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास एवं जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सुबह छपरा आगमन के पश्चात जीविका सिलाई केंद्र, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI तथा अन्य विकास स्थलों का निरीक्षण करेंगे। ITI छपरा में जिले की विभिन्न विकास योजनाओं का रिमोट के माध्यम से उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा 450.30 करोड़ की लागत से 45 योजनाओं का शिलान्यास तथा 86.50 करोड़ की लागत से 24 योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए छपरा से पवन कुमार सिंह।
राज्य में जमीन मापी के लंबित मामलों का निपटारा 31 जनवरी तक कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। श्री कुमार ने कहा कि इससे सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मामलों का निपटारा संभव हो सकेगा। इधर उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य में अभियान चलाकर जमीन से जुड़े विवादों को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। श्री सिन्हा ने कहा कि विवादित भू मापी के मामलों को लेकर भी 1 अप्रैल से विशेष अभियान चलाया जाएगा।
हमने हर जिले के अंदर एक अभियान शुरू किया, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद, पदाधिकारियों के साथ बैठकर कई हमने समस्या के समाधान के निराकरण के लिए निर्णय लिए और आज उस निर्णय को मुख्यमंत्री जी के द्वारा ट्वीट करके हमारे विभाग को प्रोत्साहित करने का, जनता की समस्याओं को समाधान के लिए एक अच्छा संदेश देने का मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जो विवादित मापी है उस पर भी हम लोग अप्रैल से विशेष नजर रखकर उसका समाधान करेंगे।
मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने निचली अदालतों को जमानत याचिकाएं निपटाने का निर्देश दिया है। पटना उच्च न्यायालय में जमानत याचिकाओं की लंबी सूची को देखते हुए सभी जिला और सत्र न्यायाधीशों को जमानत संबंधी मामलों का निपटारा करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 3 से 7 वर्ष की सजा के मामले में निचली अदालत से अग्रिम या नियमित जमानत नहीं दिए जाने के कारण हाईकोर्ट में याचिकाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इधर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा कथित रूप से बड़े पैमाने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किए जाने के मामले में सरकार से जवाब मांगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क भुगतान के अनुपालन को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 2026 को अधिसूचित किया है। इन संशोधनों का उद्देश्य उपयोगकर्ता शुल्क अनुपालन में सुधार करना, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह की दक्षता बढ़ाना और राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपयोगकर्ता शुल्क चोरी को रोकना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि यह संशोधन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI को पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास और रखरखाव की टोलिंग प्रणालियों को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। प्रावधानों के अनुसार एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन के हस्तांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक उपयोगकर्ता द्वारा कोई भी बकाया शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता। इसके अलावा राष्ट्रीय परमिट चाहने वाले वाहनों के लिए संशोधित नियमों के अनुसार यह अनिवार्य है कि वाहन पर उपयोगकर्ता द्वारा कोई भी बकाया शुल्क न हो। मत्स्य पालन विभाग आज नई दिल्ली में 83 भागीदार देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों के साथ गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करेगा। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करना, समुद्री भोजन के निर्यात को बढ़ावा देना और व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि प्रदेश के किसी भी जिले में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 1,84,000 मीट्रिक टन यूरिया समेत अन्य उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। श्री यादव ने बताया कि उर्वरकों की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए विभाग द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि रबी मौसम के दौरान कालाबाजारी करने वाले 42 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही 115 उर्वरक प्रतिष्ठानों के उर्वरक प्राधिकार पत्र रद्द किए गए हैं। गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल होने के लिए बिहार सरकार की जीविका परियोजना की ओर से 20 सदस्यीय दल को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस दल में शामिल खगड़िया निवासी आजाद राजीव रंजन निमंत्रण मिलने पर काफी उत्साहित हैं।
मुझे भारत सरकार के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर आयोजित मुख्य समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। यह मेरे लिए गर्व और सम्मान का विषय है कि मुझे इस महान अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस कार्य के लिए मैं भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय और जीविका को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने से पहले 29 जनवरी को विधान परिषद में सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता सभापति अवधेश नारायण सिंह करेंगे। बैठक में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत 18 सदस्य शामिल होंगे। इस दौरान सदन के शांतिपूर्ण संचालन और जनता से जुड़े मामलों को उठाने समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। नितिन नवीन के भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई और शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने कहा है कि श्री नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना बिहार के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर भागों में ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी की संभावना है।
अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सक्रिय सुशासन और योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख तंत्र प्रगति ने अपनी 50वीं बैठक के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने 2015 में इस तंत्र का शुभारंभ किया था। प्रगति ने केंद्र, राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों को एकल डिजिटल मंच पर लाकर सहकारी संघवाद का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज हम कोयला मंत्रालय से जुड़ी परियोजनाओं पर नजर डालते हैं। एक रिपोर्ट।
कोयला क्षेत्र के विकास के लिए कोयला मंत्रालय कई योजनाओं पर काम कर रहा है। इनका उद्देश्य बिजली उत्पादन, रेलवे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, ताकि देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो सके। इस समय प्रगति आधारित व्यवस्था के तहत कुल 134 परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है, जिनमें 122 परियोजनाएं कोयला क्षेत्र से जुड़ी है। इनमें से 1,19,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 16 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति के तहत की है। प्रगति बैठकों के दौरान दिए गए निर्देशों से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल हुआ और परियोजनाओं में आ रही बाधाओं को समय पर दूर किया गया। कोयला क्षेत्र का विकास न केवल औद्योगिक प्रगति को गति देता है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी मजबूत करता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रदेश को डिजिटल स्वास्थ्य सेवा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA की समीक्षा बैठक के दौरान आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन बिहार के राज्य मिशन निदेशक शशांक शेखर सिन्हा ने यह सम्मान प्राप्त किया। यह सम्मान ABDS को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रभावी और व्यापक रूप से लागू करने के लिए दिया गया है। प्रदेश में सरस्वती पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बिना लाइसेंस के जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। पुलिस मुख्यालय ने सभी पूजा समितियों को विसर्जन जुलूस का लाइसेंस निर्गत करने के निर्देश दिए हैं। जुलूस के दौरान हथियार और भड़काऊ संगीत बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। इधर पूजा समितियों को प्रतिमा विसर्जन जुलूसों का मार्ग निर्धारण पूर्व में ही करा लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना MDM के तहत कार्यरत रसोईया सह सहायक से कोई अन्य कार्य नहीं लिया जा सकेगा। MDM निदेशक विनायक मिश्र ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय गतका खेल प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने बालक वर्ग में पंजाब को हराकर कांस्य पदक जीता है। वहीं बालिका वर्ग में भी प्रदेश की टीम ने दिल्ली को पराजित कर कांस्य पदक प्राप्त किया। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित सब जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पश्चिम चंपारण जिले के भितहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर मनोरंजन कुमार के खिलाफ निगरानी थाने में मामला दर्ज किया गया है। डॉक्टर पर एक निजी कंपनी के सुरक्षा प्रहरी के योगदान के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र राणा ने नालंदा जिले के सभी थानों में लंबित कांडों को फरवरी माह के अंत तक निपटाने का निर्देश दिया है। श्री राणा ने 31 जनवरी तक वांछित अपराधियों के खिलाफ अदालत से वारंट लेने के भी निर्देश दिए हैं। पटना जिले की बेउर थाना पुलिस ने बेउर जेल के अंदर गांजा और स्मैक पहुंचाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इसमें 4 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया। शेखपुरा के पुलिस अधीक्षक बलराम कुमार चौधरी की अध्यक्षता में हथियावा थाना में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने अपनी शिकायतें SP के सामने रखी। वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आपदा प्रबंधन विभाग के तत्वावधान में समाहरणालय परिसर में भूकंप सुरक्षा पखवाड़े का शुभारंभ किया। यह पखवाड़ा 3 फरवरी तक चलेगा। सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत के नेतृत्व में त्रिवेणीगंज प्रखंड के मोहलिया में स्कूल बैग और स्टेशनरी किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से किया गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने नितिन नवीन के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 45 वर्षीय नितिन नवीन ने संभाली भाजपा की कमान, कहा मैं कार्यकर्ता, मोदी बोले नवीन मेरे बॉस। दैनिक जागरण ने लिखा है 7 दिनों में जमीन की मापी की गारंटी। दैनिक भास्कर अपनी विशेष खबर में लिखता है एसोसिएट और प्रोफेसर की बहाली के नियम बदलेंगे। प्रभात खबर ने लिखा है यात्रा से 8 घंटे पहले टिकट रद्द किया तो रिफंड नहीं। राष्ट्रीय सागर और आज समेत अन्य अखबारों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा से जुड़ी खबरों को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत आज सारण जिले को 538 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात देंगे। मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने निचली अदालतों को जमानत याचिकाएं निपटाने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम में संशोधन कर उपयोगकर्ता शुल्क भुगतान को सशक्त बनाया। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न भागों में ठंड में बढ़ोतरी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की कमी का पूर्वानुमान जताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।